मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, इससे पहले कि मैं खबरों पर आऊं, मुझे आप सबको एक सूचना देनी है और अपेक्षाकृत आप कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। सूचना यह है फ्रेंड्स कि आप जानते हैं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स है और साथ ही साथ हम लोग 15 दिन की ऑफलाइन की क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं यहीं भोपाल में 15 डेज की। तो अब जो क्लास ऑर्गेनाइज होनी है 15 डेज की, उसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। ध्यान से सुन लें, ये तारीख है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक की। 26 अक्टूबर को क्लास शुरू होंगी और 9 नवंबर को क्लास समाप्त हो जाएंगी। डेफिनेटली सन है 2023, राइट? 15 दिन की क्लासेस। इसी से जुड़ी जो दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि शुरू के कुछ सीट्स के लिए डिस्काउंट दिया गया है। 2,000 रुपये का डिस्काउंट अवेलेबल है शुरू के कुछ सीट्स के लिए। तो यदि आप इस पर विचार कर रहे हैं और चाहते हैं कि 2,000 का जो डिस्काउंट है उसका लाभ भी आपको मिल सके, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा इसके लिए देरी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं एक दो बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि बाद में फिर स्टूडेंट्स इस पर बकायदे ईमेल लिख करके जानने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। दोस्तों, ये हमारी जो 15 दिन की क्लासेस हैं, बेसिकली इसमें हम सिलेबस आपका पूरा नहीं कराते और कराया भी नहीं जा सकता। लेकिन आपको सिलेबस को कैसे पूरा करना है, या इसे दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, आपको पढ़ना कैसे है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया जाता है। 90 घंटे की टोटल क्लासेस होंगी और ये जो ज्यादातर क्लासेस हैं वे मैं ही लेता हूं। एक दिन में 4 क्लासेस होती हैं 1.5-1.5 घंटे की, तो 15 दिन में 60 क्लासेस हो गई। तो 60 में से कम 50 क्लासेस तो सिर्फ मैं ही लेता हूं, और 8-10 क्लासेस ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ही रेपुटेड जो गेस्ट्स हैं, जो अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट्स के माहिर लोग हैं, उन्हें हम लोग बुलाते हैं। उससे आपका इंटरेक्शन भी हो जाता है और थोड़ा आपका स्वाद भी बदल जाता है, और हम लोगों ने महसूस किया है कि उनका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके दिमाग पर पड़ता है। फ्रेंड्स, हम लोगों का जो अब तक का अनुभव रहा है वो ये रहा है कि जो 15 डेज की क्लासेस हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को बदलने में, आपकी सोच को सही करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हैं वो पूरा कोर्स कंप्लीट कराती है हमारी, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस है वो कोर्स कंप्लीट नहीं कराती। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पर बेस्ड ये क्लासेस हैं, दोनों में कोई क्लैश नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि इसमें से आप किसका चयन करना चाहते हैं, और या बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों का चयन करते हैं। च्वाइस आपके ऊपर है, लेकिन अगर आपकी और भी कुछ इस पर इंक्वायरी हो तो आप ईमेल भेज सकते हैं, हमारे ऑफिस से फोन करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे वैश्वीकरण का नया पैटर्न, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। माफी चाहूंगा कि मैं अभी पावर ऑफ एलिमिनेशन को एक दिन के लिए थोड़ा सा सस्पेंड कर रहा हूं। मंडे से फिर हम लोग आगे इसे और देखेंगे। डेफिनेटली इस पर बात हम लोग पूरा करेंगे 2 दिनों के बाद, चूंकि कल और परसों तो फिर आपको डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं करा सकूंगा, लेकिन सोमवार से फिर हम लोग उस विषय को जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ जो दूसरी खबरें हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। न्यूज़, आपने अगर रेडियो न्यूज़ सुनी हो तो उसमें एक डेटा दिया हुआ था, और केंद्र सरकार ने राज्यों से ये रिक्वेस्ट की है कि हम एक योजना के तहत पूरे देश में 1023, मुझे लगता है कि आंकड़ा इम्पॉर्टेंट है, 1023, 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बना, जो पास्को एक्ट से संबंधित है। पास्को एक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपको जानना ही चाहिए। अगर नहीं जानते हो तो आप अपनी तरफ से जानने की कोशिश कर लीजिए। चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया आंकड़ा है, संसद में ये बात बताई गई है, तो ये आंकड़ा आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ आंकड़ा है। और आज के दैनिक भास्कर में पास्को एक्ट को लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट भी छपा है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उठाई गई हैं जो अभी तक इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के दौरान देखने में आई हैं, और खासकर पिछले 2016 से 20 के बीच में जो स्टडी की गई है उस पर यह जो आप कह लीजिए एडिटोरियल कमेंट आधारित है, और मुझे लगता है कि एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें आपको नोट भी कर लेना चाहिए। दोस्तों, क्या मैं अब आपको बताऊं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? मुझे लगता है कि यह आप लोगों पर ही छोड़ देना बेहतर होगा, तो मैं इसे आप लोगों पर ही छोड़ना चाहूंगा। एक और डेटा रेडियो न्यूज में था, मुझे लगता है कि इसके बारे में भी आपको बताया जाना चाहिए। वो ये है कि सरकार, आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ ऐसे कानून जो बहुत पुराने हो गए हैं उसको खत्म करने में लगी हुई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगातार 2014 के बाद इसकी कोशिश हो रही है। तो सरकार ने इस पर भी एक आंकड़ा दिया है और ये बताया है कि 1486 ऐसे कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, यूं कह लीजिए कि खत्म कर दिया गया है, जो बेकार हो गए थे, अप्रासंगिक हो गए थे, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं रह गई थी, जो बेकार की जटिलता पैदा कर रहे थे, ऐसे कानून खत्म कर दिए गए हैं। ये जो आंकड़ा है मैं रिपीट कर रहा हूं, 1486, राइट? दोस्तों, मुझे एक अखबार में जो थोड़ी सी जानकारी पढ़ने को मिली है, मुझे लगा कि इस पर बात की जानी चाहिए थोड़ी सी, और वो ये है कि अमेरिका की जो लेबोरेटरी है, जो प्रयोगशाला है, उसने एक धातु तैयार किया है, धातु, और उसे नाम दिया है अद्भुत सहनशीलता वाला पदार्थ, पदार्थ कह लीजिए, अद्भुत सहनशीलता वाला पदार्थ। मजेदार बात है कि सहनशीलता से आपको लग रहा होगा कि यह बड़ा कोमल सा होगा, नहीं, लेकिन यह उसके बिल्कुल विरुद्ध है। यह एक ऐसे धातु तैयार हुई, ऐसा पदार्थ तैयार हुआ है जिसे अब तक इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे मजबूत पदार्थ घोषित किया गया है। हां, इसका लचीलापन बहुत है और खासकर मजबूत बहुत है, इसीलिए इसे कहा गया है अद्भुत सहनशीलता वाला पदार्थ। और मजेदार बात यह है कि इस पदार्थ को आप जितना ज्यादा ठंडा करते जाएंगे, इसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानना है वो ये है कि ये जो नया पदार्थ बनाया गया है किन से मिलाकर बनाया गया है। आप जानते हैं एक तो तत्व होता है जो केवल एक ही पदार्थ होता है, एक, लेकिन यौगिक होते हैं जो एक से अधिक पदार्थों के योग से बनाए जाते हैं, तो उसका नाम है यौगिक। एक से अधिक पदार्थों को मिला करके तैयार किया जाता है, तो बेसिकली ये जो पदार्थ है ये यौगिक है, या कह लीजिए कि सरल भाषा में मिश्र धातु है। इसमें तीन चीजें मिली हैं, जनरल नॉलेज की दृष्टि से इनके नाम याद रखना मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। एक है क्रोमियम, दूसरा है कोबाल्ट, और तीसरी धातु है निकल। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल, बस इतना आप दिमाग में रख लीजिए, अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो पक्का है कि आप सही उत्तर की तलाश कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है वैश्वीकरण का नया पैटर्न। दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा है राजदीप सरदेसाई जी का, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं, बहुत ही मेच्योर, उन थॉट पर आधारित, विचारों पर आधारित बात वो करते हैं। उनके आर्टिकल का शीर्षक है फुटबॉल के मैदान पर अब टूटने लगी हैं राष्ट्रीय सरहदें, और इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है ये इस बात पर बेस्ड है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में अब वैश्वीकरण का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया एक होने जा रही है। इसी को लेकर के आप देखिए कि पूरी दुनिया के बाजार ओपन कर दिए गए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, वो इसकी व्यवस्था देख रहा है, सामान भेजना, सामान मंगाना, एक देश से दूसरे देश में जाना, वहां जाकर के वहां की नागरिकता प्राप्त करके वहां रहने लगना, उद्योग खोलना। हमारे यहां भी आप देखिए कि कितने सारे लोग आ रहे हैं, उद्योग विदेश के लोग खोलते चले जा रहे हैं, तो ये वैश्वीकरण का एक स्वरूप है। पिछले कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि अब इसका विरोध होने लगा है, विरोध होने लगा है। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो इसके विरोध में बातें करने लगी हैं, और कुछ ऐसे वर्ग भी तैयार हो गए हैं राष्ट्रों में जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये बाहर के लोग आकर के हमारा रोजगार छीन रहे हैं, हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं, हमें डोमिनेट कर रहे हैं, इस तरह की बातें होने लगी हैं, अखबारों में आप पढ़ रहे हैं। इसको आधार बना करके ये कहा जाने लगा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वैश्वीकरण के विरोध में लोगों का आक्रोश फूट रहा है, और अब धीरे धीरे ये कमजोर पड़ के समाप्त हो जाएगा। आपको मालूम है कि ब्रिटेन भी किस तरीके से ब्रेग्जिट कर गया, यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब वो तो खत्म हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है धीरे धीरे, या कमजोर पड़ रहा है। तो इन्होंने एक नए पैटर्न की बात की थी, और मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई ऐसा वर्ष नहीं है मेंस में जब इस पर प्रश्न नहीं पूछा गया हो। तो अब जो राजदीप सरदेसाई ने जो अपनी बात रखी है, वो खासकर अभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जो कतर में चल रही है उसके संदर्भ में रखी है। ये आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इस आर्टिकल को आप विस्तार से पढ़िएगा और कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। इन्होंने अपने बात की शुरुआत की है मोरक्को की टीम से। अफ्रीकी टीम है, और आप देखिए कि कोई भी अफ्रीकी टीम यहां तक पहुंच सके सेमीफाइनल में, ये पहली बार हुआ है। अखबारों में आपने इसके बारे में खूब पढ़ा भी होगा, और अगर आप फुटबॉल प्रेमी हैं फिर तो आप कई गुना मुझसे ज्यादा जान रहे होंगे। तो दोस्तों, इसमें उन्होंने ये एक बात जो जिधर ध्यान दिलाया है वो है कि इनकी जो टीम है पूरी की पूरी, इसमें 26 मेंबर्स हैं, और इसमें से 26 आउट ऑफ 26 मेंबर्स, जो 14 मेंबर्स हैं वो मोरक्को के नहीं हैं। तो फिर कहां के हैं? उनमें ज्यादा जो सदस्य हैं, जो खिलाड़ी हैं, या तो यूरोप के हैं या कहीं दूसरे देशों में जाकर के रह रहे हैं। सोच करके देखिए, दूसरे देशों के हैं वो, और खेल किसकी तरफ से रहे हैं? मोरक्को की तरफ से रहे हैं। फिर उन्होंने एक और डेटा दिया है, मुझे लगता है कि ये दो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये जो पूरी प्रतियोगिता हो रही है इसमें लगभग 125 खिलाड़ी इस तरीके के हैं जो जन्मे तो किसी और देश में थे लेकिन खेल किसी और देश के लिए रहे हैं। सामान्यतया क्या होता है, जिस देश के आप नागरिक होते हैं उसी देश के लिए खेल रहे होते हैं। हम लोग सबके दिमाग में यही बात भरी हुई है, लेकिन यहां यह देखने में नहीं आ रहा है। 125 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका जन्म किसी दूसरे देश का है लेकिन वो खेल किसी और देश के लिए रहे हैं। इसके आधार पर उन्होंने अंत में निष्कर्ष निकाला है कि देखा जा रहा है कि अगर फुटबॉल को इस तरह की सांस्कृतिक बहुलता से और प्रवासियों से लाभ मिल सकता है, मतलब उनको बुलाने से, उनका उपयोग करने से लाभ मिल सकता है, तो फिर समाज क्यों पीछे रहे, राष्ट्र क्यों पीछे रहे। इसका मतलब है कि जो ये प्रवासी लोग होते हैं, अगर एक दूसरे के यहां आते जाते हैं, हम उन्हें आने देते हैं, अपने यहां रहने देते हैं, तो इसका लाभ देश को मिलेगा, समाज को मिलेगा, यानी कि ये विश्व व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, वैश्वीकरण का समर्थन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: रवीना राय खपुरा बिहार से, अनामिका कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, इशरत परवेज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, और काजल चंदेल। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।